الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم على المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب العالمين. تو آج بدھ کا دن ہے اور آج بھی ہمارا یہ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ اگلے بدھ سے یا اس کے اگلے بدھ سے بدھ کے درس قرآن کو ہم ایک اور کلاس سے تبدیل کریں گے. انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ جلد کوئی نوٹیفیکیشن وغیرہ دیکھیں گے ہماری طرف سے, تو وہ پھر باقاعدہ یعنی ایک انرولمنٹ بیسڈ کلاس ہوگی. فیس اس کی کوئی نہیں ہوگی, لیکن جو اس میں انرول کرے گا اپنا نام رجسٹر کرے گا تو اسی کو پھر اس کلاس کے اندر انوائٹ کیا جائے گا. تو درس قرآن پھر انشاءاللہ پیر کے دن جاری رہے گا اور جمعے کے دن جو درس قرآن کا سلسلہ جاری رہتا ہے وہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جاری رہے گا, اور صبح کے وقت جو خواتین میں درس قرآن ہوتا ہے وہ بھی پیر کے دن جاری رہے گا. بہرحال اس چھوٹے سے اعلان کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. معارف و مسائل ہم پڑھ رہے تھے ان آیات, اس آیت یعنی آیت نمبر 2 کے, جو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے, اور وہ ہم معارف القرآن کی جلد نمبر 3 میں سے پڑھتے ہیں. تو اس کا صفحہ نمبر 26 یہ ہم پڑھ رہے تھے, جس میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعاون علی البر والتقویٰ وغیرہ کے عنوان میں ہی جو ہے یہ بات کری تھی کہ دنیا کے اندر جو یہ نظام ہے نا, اللہ رب العزت نے جو قائم کیا ہے بر اور تقویٰ والا نظام, اور اس کے اوپر ترغیب دی ہے اور اس کے اوپر اپنا انعام رکھا ہے. تو اس نظام کے بغیر جو نظام بنائے جاتے ہیں تو وہ یعنی اس سے جو ہے کوئی خیر کا داعی اور شر کو روکنے والا سپاہی نہیں بنتا. تو اس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ عشق یعنی یہ جو نظام ہوتا ہے نا بر اور تقویٰ والا نظام, تو یہ فوجی مشقوں سے نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ملٹری ایکسرسائزز سے یہ نظام نہیں بنتا ہے, پریڈوں سے یہ نظام نہیں بنتا ہے, نہ شہری دفاع کے طریقوں سے یہ نظام بنتا ہے, بلکہ یہ ہنر یہ تو تعلیم گاہوں میں سیکھنے سکھانے کا ہے, ٹھیک ہے, یعنی تعلیم کی جو جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر یہ بر اور تقویٰ پر تعاون کرنا وہاں سکھایا جاتا ہے, اور اسم اور عدوان پر تعاون نہ کرنا یہ وہاں سکھایا جاتا ہے, جن کو تعلیم گاہیں کہا جاتا ہے. وہیں پر ذہن سازی ہوتی ہے, وہیں پر دل سازی ہوتی ہے, وہیں پر عمل سازی ہوتی ہے, اور ان تعلیم گاہوں میں سے سب سے پہلی تعلیم گاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ماں کی گود کے بعد وہ گریجویٹ کر کے جب وہ اپنے گھر کے ماحول میں آتا ہے تو پھر اوور آل گھر کا جو ماحول ہے وہ انسان کے لیے تعلیم گاہ بن جاتا ہے, اور جیسے جیسے پھر وہ بڑھتا رہتا ہے اپنی عمر کے اندر تو ویسے ویسے اس کے اندر بھی ایڈوانسمنٹ آتی جاتی ہے, حتیٰ کہ پھر وہ اور ایڈوانس سے ایڈوانس جو ہے وہ چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے اور کرتی ہے. مرد جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں جو اللہ تعالیٰ نے اس کا رول بنایا ہے دنیا کے اندر اور اس کی ذمہ داریاں لگائی ہیں, مرد ان کو احسن طریقے سے انجام دینے کی تعلیم حاصل کرتا ہے, और औरत का अल्लाह ताला ने जो रोल बनाया है और औरत की जो जिम्मेदारी लगाई है इंसानी मुआशरे के अंदर, औरत उस जिम्मेदारी को एहसन तरीके से अंजाम देने के लिए जिस तालीम की जरूरत होती है वो तालीम हासिल करती है। ठीक है, तो ये है अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम। ठीक है, अब जाहिर है शैतान जो है वो तो अल्लाह ताला के निज़ाम के खिलाफ करने के लिए ही बनाया गया है, आजमाइश रखी गई है ना हमारे लिए कि भाई कोई रुकावट भी तो हो, कोई उल्टी बात करने वाला भी तो हो, तभी तो पता चलेगा ना कि तुमने सीधी बात को कितना माना, कितनी बात तुमने जो है वो एक्सेप्ट करी। बातें तो बहुत कर लेते हो लेकिन करके भी कुछ दिखाना है कि नहीं दिखाना है। तो शैतान का काम यही है कि अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के खिलाफ जो है वो निज़ाम लोगों को उकसाना बनाने के ऊपर। तो उसके लिए जो है वो औरतों को वो वाला रोल सिखाता है कि जो रोल उनका अल्लाह ने नहीं बनाया था। तो अब जाहिर है जब वो रोल वो अदा करना चाहेंगी तो फिर उनको कहता है कि अब इसके लिए तालीम भी तो तुमने वही वाली हासिल करनी है। ठीक है ना, जो कि उस रोल के लिए है जो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारा नहीं बनाया था। तो फिर औरत कहती है अच्छा ठीक है मुझे वो वाली तालीम चाहिए, और उसको फिर वाहिद तालीम और वाहिद सही तालीम बना करके पेश करता है और हम उसकी बात मान लेते हैं, और हम उसकी बात मान लेते हैं और माने चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हत्ता कि कोई आकर के इसके खिलाफ अगर हमें अल्लाह का बनाया हुआ रोल बताना शुरू कर दे तो हम इसको कोई अजीब गरीब किस्म की मखलूक समझना शुरू कर देते हैं, और उसको तालीम के खिलाफ समझना शुरू कर देते हैं, और जहालत का दाई समझना शुरू कर देते हैं। हैं, हालांकि वो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है कि भाई जो आपका रोल है वो तालीम हासिल करो भाई। हैं, इतनी सी बात कर रहा है वो, इससे कोई आगे पीछे तो और बातें नहीं कर रहा ना। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने किसी ने लिख दिया यहाँ पर कि बट सर, बट सर अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट रिसीव सच एजुकेशन, सो एक्ट जो एक्चुअली मिलनी थी हमें, इज इट पेरेंट्स फॉल्ट, इज इट पेरेंट्स फॉल्ट, सो व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है? ठीक है, तो भाई फॉल्ट तो कहीं कहीं ना कहीं किसी ना किसी की है ना। ठीक है, तो पेरेंट्स से भी ये गलती हो गई है, सही है। तो अब गलती जब हो जाती है तो उसके ऊपर अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा खोला हुआ है, माफी मांगने का दरवाजा खोला हुआ है। बड़ी से बड़ी गलती हो, अल्लाह ताला से जब माफी मांगता है बंदा तो अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा काम क्या करना होता है कि जिनको बात समझ में आ गई कि हाँ भाई ये तो गलती थी, तो अब आप तो इसको रिपीट ना करें ना, राइट, हम तो वो गलती रिपीट ना करें। अब तो इल्म पहुंच गया आप तक, बात समझा दी गई अब आपको, अब आप भी वही वाली हरकत करेंगी तो फिर जो है वो आपको तो डबल सजा मिलेगी। उन्होंने तो उनकी गलती ये थी कि उन्होंने इल्म हासिल करने की कोशिश नहीं करी, उनकी ये गलती। हालांकि इल्म मौजूद था, कुरान भी मौजूद था, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत तो सुन्नत भी मौजूद थी, हमारे मशाइख भी मौजूद थे, उलमाए कराम भी मौजूद थे, सब कुछ मौजूद था, लेकिन उस तरफ तवज्जो ही नहीं करी, सारी तवज्जो दूसरी तरफ। ठीक है, तो उनकी ये गलती थी, और हमारी क्या गलती होगी कि हमने इल्म हासिल कर लिया फिर भी उस पर अमल नहीं किया, फिर भी उस पर अमल नहीं किया। ठीक है, तो बात को समझने की जरूरत है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह ताला से माफी मांगने और मदद मांगने। अल्लाह ताला जरूर बिल जरूर मदद करेंगे इसके अंदर, कैसे नहीं करेंगे, अल्लाह ने वादा किया है, तो वादा तोड़ने के लिए कोई थोड़ी वादा किया था अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला कोई पाकिस्तानी को थोड़ी है, नऊज बिल्ला है, बात समझाने के लिए कह रहा हूँ। हमारे नजदीक जो है ना वो क्या स्लोगन है, वादा कैसा वो वादा ही क्या जो तोड़ा ना जाए, राइट, वो वादा ही कैसा जो तोड़ा ना जाए, ये तो हमारा स्लोगन है ना। अल्लाह के यहाँ तो ऐसा मामला बिल्कुल भी नहीं है, अल्लाह ताला वादा करते हैं और फिर उसको पूरा भी करते हैं। अच्छा बहरहाल, तो हम यहाँ तक पढ़ रहे थे कि बिर और तक्वा और उनकी तालीमात का दाखिला आजकल की आम तालीम गाहों में ममनू है, बिल्कुल उसका दाखिला ही जो है ना वो मना है, और ऐसे मोदवान का हर रास्ता खुला हुआ है। ठीक है, चाहे वो किताबों की शक्ल में हो, चाहे वो टीचर्स की जहन साजी हो चुकी है, इसी तरीके से टीचर्स की भी तो जहन साजी हो चुकी है ना। अब टीचर आकर के किताब पढ़ाता है या पढ़ाती है तो वो अपने जहन के मुताबिक ही बच्चों का जहन बनाएगी ना। ठीक है, वो ये कुछ थोड़ी क्या उसका जहन तो कुछ और बना हुआ था और बच्चों का किसी और तरीके से वो जहन बनाएगी, वो तो मजबूर है भाई टीचर। ठीक है, वो फाइट एज यू आर ट्रेंड आजकल चल रहा है ना ये बहुत ज्यादा। ठीक है ना, तो भाई वो तो आकर के उसी तरह से बच्चों के साथ फाइटिंग करेगी जिस तरह उसको ट्रेनिंग दी गई है, अनलेस के वो भी तौबा करे। अनलेस कि वो भी तौबा करे गलती के ऊपर, रियलाइज करे और फिर सही इल्म हासिल करे और उसके मुताबिक जो है वो साइंस पढ़ाए और मैथ पढ़ाए और इंजीनियरिंग पढ़ाए और मैथमेटिक्स पढ़ाए और जो कुछ भी पढ़ाना है जायज उलूम में से वो सब कुछ पढ़ाए, लेकिन सही जहन के साथ पढ़ाए ना, ठीक है ना। अल्लाह को इंट्रोड्यूस करने की नियत से पढ़ाए साइंस, अल्लाह ताला की अजमत बयान करने की नियत से साइंस पढ़ाए, ना कि कुफर की अजमत बयान करने की नियत से साइंस पढ़ाए, ठीक है ना। वो तो ऐसे हम साइंस पढ़ा रहे होते हैं कि पढ़ने वाला जो होता है वो सिर्फ उन किताबों को लिखने वाले की मोहब्बत में मुब्तला हो रहा होता है, राइट। और उस किताब को लिखने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी अजमत का जो है वो दिलदादा बन रहा होता है, ठीक है ना। तो अल्लाह की अजमत तो फिर नहीं आती ना उसके दिल के अंदर, और अल्लाह के रसूल की और मुसलमानों की और मुसलमान जो सहाबा कराम थे उनकी अजमत तो फिर उसके दिल में नहीं आ सकती है ना, ठीक है। तो बिल्कुल ही बुनियाद ही जब गलत हो जाती है फिर ऊपर से हम उसको टोपी पहनाने की कोशिश करते हैं, हैं कि वो टोपी पहन लेगा तो अच्छा मुसलमान बन जाएगा, फिर उसके बाद दाढ़ी उगा लेगा तो अच्छा मुसलमान बन जाएगा, उसके बाद अंदर की जो है ना वो रग रग रेशे रेशे के अंदर कुफर भरा हुआ है, कुफर की अजमत भरी भरी हुई है, कुफर की मोहब्बत भरी हुई है, ऊपर से दाढ़ी लगा लोगे तो तुम्हारा सारा काम अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, हरगिज हरगिज अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो भाई दिल को दिल साजी की जरूरत होती है ना, जहन साजी की जरूरत होती है जो कि स्कूल में हो चुकी है, अब उससे तौबा करेंगे तो ठीक हो जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जी अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, नहीं सब कुछ हो सकता है, और करना भी अल्लाह ने है, हमने खुद को थोड़ी करना है, करना अल्लाह ने है, हमने तो अल्लाह ताला को राजी करना है, अल्लाह ताला को जो दुआ मांगनी है, माफी मांगनी है, मदद मांगनी है, अल्लाह ने बाकी सारा काम खुद कर देना है, वही हम नहीं करते, हम यही करके नहीं दे रहे, तो फिर अल्लाह ने आगे से फिर मांगा, जब तब नहीं होगी तो मैं भी कुछ नहीं दूंगा तुम्हें। अच्छा बहरहाल तो फरमाते हैं कि जी फिर ये बेचारी पुलिस कहाँ तक जराइम की रोकथाम करे, ठीक है ना, वेस्ट हो या ईस्ट हो ये पुलिस के बस में नहीं है जराइम की रोकथाम करना, हमें नजर नहीं आते वेस्ट के अंदर जो जराइम होते हैं, राइट। हमें तो उनका हॉलीवुड नजर आता है, हमें तो उनका जो है ना वो बड़ा प्यारा साफ सुथरा सा एक मीडिया जो कवरेज होती है वो नजर आती है, ठीक है। हमें तो उनकी हकीकत पता ही नहीं है, उनकी सड़कों पे क्या हो रहा होता है और उनके घरों में क्या हो रहा होता है और उनके जेल खानों में क्या हो रहा होता है और उनके ऐवानों में क्या हो रहा होता है, हमें पता ही कुछ नहीं है कि वहां पे क्या हो रहा होता है, कितना वहां पे जो है वो यानी गोरा गोरा सा जो है ना वो यानी करप्शन हो रही होती है, हमारे यहाँ काली काली करप्शन हो रही होती है ना, वहाँ पे गोरी गोरी करप्शन हो रही होती है, इसको हम समझते हैं कि बड़ी अच्छा बड़ा जबरदस्त है वो लोग, तो कोई करप्शन नहीं करते हैं, तो पता ही कुछ नहीं है, तो इस वजह से पुलिस रोकथाम नहीं कर सकती है। जब ही तो अब कैमरे लगा दिए इतने सारे, कैमरे लगाने वाले कैमरे के पीछे भी जो लोग बैठे हैं वो भी झूठे बैठे हुए होते हैं, तो जब सारी कौम हलाल और हराम और हक और नाहक से बेगाना होकर के जराइम पेशा बन जाए, ठीक है, तो आज जो जराइम की कसरत, चोरी, डाका, फवाहिश, फोहश, नाच गाना, जिना और एक दूसरे की इज्जत को लूटना और इज्जत को उछालना, है, ये फवाहिश के अंदर ये सारा सारा आता है, कत्लो गारत गरी की फरावानी, चाहे अबोर्शन की शक्ल में पतलो करिए, हर जगह और हर मुल्क में रोज बरोज ज्यादातर होती जा रही है, और कानूनी मशीनरी उनके इंसिदाद से आजिज है, ठीक है। मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की, ठीक है। तो अब उनको पता चल गया ना कि उन्होंने अब इंसानों का बेड़ा गरक कर दिया है, अब इंसान किसी काबिल नहीं रहे हैं, तो अब वो सारी तवज्जो जो है वो एआई के ऊपर हो गई है, क्या हम मशीन्स बना देते हैं, मशीन सारा काम कर लेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके, ठीक है। और वो इसी तरफ सारी की सारी मेहनत है, क्योंकि इंसानों की अकल और जो उनकी जो है ना काम करने की सलाहियत वो बिल्कुल मफलूज हो गई है। अब आप देखें ना आपके स्कूलों के अंदर जो बच्चे इस वक्त जो है वो जिस किस्म के वो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं और जिस किस्म के उनकी रिलायंस जो है वो मशीन्स के ऊपर हो गई है, ठीक है ना, चैट जीपीटी जैसी चीज के ऊपर, वो तो एक चीज है ना, उसके अलावा हजार चीज है, तो अब उनका उनका जो दिमाग है ना वो फंक्शनल नहीं रहा है बच्चों का, ठीक है ना, दिमाग के अंदर सोचने समझने की सलाहियत और कुछ काम करने की सलाहियत, भाई आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो शार्प होगा ना, दिमाग को तो इस्तेमाल करने के लिए टाइम ही नहीं छोड़ा, ठीक है, कुछ छोड़ा ही नहीं काम करने के लिए। तो फिर तो वो तो अब जो अब ये जब जब नस्ल बड़ी होगी तो इनका हाल हमसे भी बुरा होगा, हमसे भी ज्यादा बुरा होगा। यानी हमारा हाल इतना बुरा है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते हमारा कितना बुरा हाल है। हमारी जो औलाद बाहर निकलेगी ना इंस्टीट्यूशन से, वो हमसे भी ज्यादा बुरी है, ठीक है। तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जो कि अपनी औलाद को इस सिस्टम का हिस्सा बनने से बचा रहे। उनको अंदाजा नहीं है कि वो कितनी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी औलाद के अंदर, ठीक है। तो इसके यही दो असबाब हैं कि एक तो हुकूमतें इस पुरानी निजाम से दूर हैं, ठीक है, हुकूमतें भी दूर हैं और अवाम भी दूर हैं पुरानी निजाम से। उनके अरबाब इकतदार अपनी जिंदगी को बिर व तकवा के उसूल पर डालते हुए झिझकते हैं, ठीक, नेकी और तकवा के, खुदा खौफी के उसूल पर डालते हुए उनको मौत आती है, झिझकते हैं, मौत आती है मतलब, ठीक है। तो अगरचे के इसके नतीजे में हजारों तलखियां उनको झेलने पड़ती है ना भाई, यानी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर उनको कितना जो है वो पैसा लगाना पड़ता है, और जो है वो सर्वेलेंस सिस्टम्स के ऊपर कितना पैसा लगाना पड़ता है, कितना उसके ऊपर भी जो है ना वो उनको नुकसान ही हो रहा होता है, यानी उसकी कोई हद नहीं है। अब आप अमेरिका में जाकर के देख लें ना, अमेरिका में जो प्रिजन सिस्टम है उसके ऊपर वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं प्रिजन सिस्टम को मेंटेन करने के ऊपर। फिर भी उसके अंदर जितना क्राइम प्रिजन सिस्टम के अंदर मौजूद होता है उतना क्राइम इवन उसके बाहर भी मौजूद नहीं होता। यानी क्रिमिनल्स को पकड़ पकड़ करके वो जेलों में डालते हैं और जेलों के अंदर भी क्राइम ही चल रहा होता है, और उसकी जो मेंटेनेंस होती है, खाना पीना, उसकी जो है वो बिजली का खर्चा, उसकी जो है वो गैस का खर्चा, उसकी जो है वो बाकी सारे के सारे वो उसके ऊपर अलग खर्चा कर रहे होते हैं, ठीक है। ये तो अमेरिका की बात करें, बाकी दुनिया को तो आप उसके ऊपर कयास कर लें। तो कहते हैं कि हजारों तलखियां झेलनी पड़ती हैं उनको, काश के वो इस तलख होंठ को एक दफा तजुर्बे के लिए ही पी जाए और फिर खुदा ताला की कुदरत का तमाशा दें। तलख घोट क्या है? तौबा करना, ठीक है ना, अपनी गलती को तस्लीम करना, ये है तलख घोट। लेकिन ये एक दफा पीना होता है भाई, और कोई तलखी इसके अंदर कैसी? अपने परवरदिगार से ही तो जुड़ने जुड़ने के लिए तुम तौबा कर रहे हो, इसमें कैसी तलखी? लेकिन जाहिर है नफ्स जो होता है वो अमारा होता है, शैतान जो होता है वो सवार होता है, तो इस वजह से तौबा करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम नजर आ रहा होता है, ठीक है ना। जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तौबा करने के लिए तैयार नहीं। इस्लाम के लिए जान भी दे देंगे, भाग करके काफिर से लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन गुनाह से तौबा करना, शिर्क से तौबा करना, खुद जो इस किस्म की हरकतों में लगे हुए हैं उससे तौबा नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे ज्यादा बेवकूफी और क्या हो सकती है भैया। आप तौबा करें, अल्लाह ताला की तरफ रुख फेरें अपना, और फिर अल्लाह ताला का तमाशा देखें कैसे वो अल्लाह ताला कुदरत का तमाशा दिखाती है अब आपको, ठीक है। अल्लाह ताला कुदरत का तमाशा दिखाते हैं कि किस तरह उनको और अवाम को अमन और सुकून और चैन और राहत की हयात तय्यबा अता होती है, ठीक है। हम अवाम को भी और हुकूमत को भी अल्लाह ताला अता फरमाएंगे हयातुन तय्यबा, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन अव उन्था वह हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। हम जरूर बिल जरूर उनको हयात तय्यबा अता फरमाएंगे, ठीक है, जो के आमाले साले करता हो, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, राइट, चाहे मर्द हो चाहे औरत, दोनों को बिल्कुल बराबर इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने आयत के अंदर, जिक्र किया अल्लाह ताला ने आयत के अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पर हयात तय्यबा इस आयत के अंदर जो अल्लाह ताला ने वादा करी है वो ईमान के साथ मशरूत है, लेकिन जो कुरानी उसूल हैं उनको अगर कोई बगैर ईमान के भी दुनिया के अंदर इंप्लीमेंट करे ना, दुनियावी फायदा तो उसको भी हासिल हो जाता है, दुनियावी फायदा तो उसको भी हासिल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम तारीफ करते करते नहीं थकते हैं वेस्टर्न नेशंस की, जैसे वेस्टर्न यूरोप कम से कम, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें उन्होंने जो इस्लामी उसूल अप्लाई किए हैं, तो फिर भी एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है ना वहां पे कंट्रोल में होती है, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि हर बंदे को छोटा सा काम करवाने के लिए जो है वो यानी अपनी जिंदगी बर्बाद करनी पड़ जाए, यानी बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाए, हो जाते हैं काम। तो वो जो पुरानी उसूल उन्होंने बगैर ईमान के चंद एक भी इस्तेमाल करनी है ना, उनसे भी उनको फायदा हो रहा है, ठीक है। तो जो ईमान के साथ इस्तेमाल करेगा उसकी तो घर के अंदर की जिंदगी भी बाहर हो जाएगी, सिर्फ बाहर की जिंदगी बाहर नहीं होगी। उनका मसला क्या है, उनके घर के अंदर की जिंदगी दुरुस्त नहीं होती, ठीक है ना, उनका सिर्फ बाहर की माहौल थोड़ा सा दुरुस्त हो जाता है, और उनकी फिर कब्र की जिंदगी और हशर की जिंदगी दुरुस्त नहीं होती। यानी सिर्फ एक उनको एस्पेक्ट हासिल होता है चंद पुरानी उसूलों को अप्लाई करने के ऊपर, और जो ईमान वाला होता है उसकी घर से लेकर के आखिरत तक की पूरी जिंदगी हयात तैयबा बन जाती। क्या लिखा है इन्होंने, दो तीन मैसेजेस आए में तो पढ़ लेते हैं कि विदाउट नोइंग टीचर्स अकीदा पीपल सेंड लिटिल किड्स बिकॉज मदर्स वॉन्ट टाइम, इवन पैम्पर वाला बच्चा भी डे केयर में जाता है ताकि उसको आदत हो, इस चीज की आदत हो, बिगड़ने की आदत हो, राइट। क्या ये जुल्म की तारीफ में आएगा, ये जुल्म की बहुत बड़ी तारीफ में आएगा। हाउ मदर्स विल गेट अवेयरनेस, आप पहुंचाए ना अवेयरनेस, आपको लगा ने तोफीक दी है बातें सुनने की और समझने की और इससे एग्री करने की, अब आप आगे पहुंचाए ना अवेयरनेस, दैट्स हाउ दे विल गेट अवेयरनेस। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो अवेयरनेस दी तो उन्होंने आगे पहुंचाई, सहाबा को मेरी सहाबा ने आगे पहुंचाई, फिर ताबईन को मेरी ताबईन ने आगे पहुंचाई, इसी तरह तो हम बैठ करके ये फ्रूट खा रहे हैं, तो इसी तरीके से काम होता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है इसका। इफ दे आर नॉट विलिंग टू एक्वायर नॉलेज रिगार्डिंग दिस, भाई अबू जहल वॉज नॉट विलिंग टू एक्वायर नॉलेज एक्सेप्ट नॉलेज, जहन्नुम में गया, क्या हुआ उसके साथ, जहन्नुम में गया। अबू लहब नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के हबीब मौजूद थे, ही वॉज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट, जहन्नुम में गया। उसी तरीके से आज भी यही उसूल चल रहा है भाई, ठीक है ना, जो नहीं एक्सेप्ट करेगा उसकी दुनिया भी जहन्नुम बनेगी, हयात तैयबा से महरूम रहेगी, महरूम रहेगा, और जो एक्सेप्ट करेगा वो दुनिया में भी हयात तैयबा पाएगा और आखिरत में भी हयात तैयबा पाएगा, ठीक है। आप उसकी फिक्र ना करें, अपना काम करें, ठीक है। हमारा हमारी जिम्मेदारी क्या है, वही जो रसूलों की जिम्मेदारी थी, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, ठीक है, कि हमारे ऊपर कोई और जिम्मेदारी नहीं है सवाए बलागे मुबीन, यानी खोल खोल करके मैसेज को आगे पहुंचाना, समझा समझा करके मैसेज को आगे पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है जो हमने रसूलों से इनहेरिट करी है। हिदायत ये अल्लाह की जिम्मेदारी है, अल्लाह ने अपने ऊपर लिया हुआ है, हम इसके अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकते। मजीद तफसील सुनना चाहें तो पिछली वाली क्लास की रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, बहुत तफसील से हिदायत के मौजू पर पिछली वाली क्लास के अंदर की बात हुई थी, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो सवाल लिखा है, कैसे पता चलता है कि हमारा दिमाग चलना शुरू हुआ है, और फिर कैसे उसे सिरात मुस्तकीम के ऊपर फोकस करवाना है, कैसे पता चलता है कि हमारा दिमाग दिमाग चलना शुरू हुआ है, और फिर कैसे उसे सिरात मुस्तकीम के ऊपर फोकस करवाना है, जहन को कैसे सिरात मुस्तकीम पर फोकस करवाना है, कैसे चलना शुरू हुआ है ना, तो ये ऐसे ही पता चलता है जब हम अपनी गलतियों के ऊपर नादिम और शर्मिंदा होते हैं ना, तो दिस इज द फर्स्ट एंड श्योरेस्ट साइन कि अब दिमाग चलना शुरू हो गया, ठीक है, अब दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया है, अब अपनी गलतियां नजर आ रही, ठीक है। इसको जो है वो दीद कसूर भी कहते हैं कि अपनी गलतियों की दीद नसीब हो जाना, ठीक है ना, रिकग्निशन ऑफ वंस फॉल्ट, ये पहली निशानी है, इससे इसके बगैर दिमाग नहीं चल रहा। कुछ कर लो, हज करके आ जाओ, उमरे करके आ जाओ, तौबा नहीं करी है ना, दिमाग बंद है, दिमाग नहीं चल रहा। तौबा करने से दिमाग जंप स्टार्ट होता है, जंप स्टार्ट, जैसे आप होते हैं ना बैटरी से जो है वो अपनी गाड़ी को जंप स्टार्ट करवाना पड़ता है, तौबा इज दैट बैटरी, ठीक है, इससे जंप स्टार्ट हो जाता है, फिर इसके बाद जो है ना वो सफर शुरू हो जाता है, इसके बाद फिर इनाबत मिलती है, यानी अब अल्लाह ताला की तरफ आप रुजू होते हैं, और जब रुजू होते हैं ना तो फिर अल्लाह ताला की फिर वो नजर आनी शुरू होती है कुदरत, ठीक है, और जब अल्लाह की कुदरत नजर आती है ना तो फिर उसके बाद बंदा जो है ना वो टिक नहीं सकता एक जगह पर, फिर वो अल्लाह की तरफ दौड़ता है, अल्लाह की बल्कि दौड़ता क्या है, वो तो चलता है, अल्लाह ताला की रहमत उसकी तरफ दौड़ती है, फिर ये चलता है, अल्लाह की रहमत दौड़ती है, तो तौबा के बाद फिर यू आर एबल टू फोकस एंड यू आर एबल टू स्टे ऑन सिराते मुस्तकीम, ठीक है। तो आपका सवाल भी जरा इसी किस्म का, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल किस्म का था, तो जवाब भी है, लेकिन इट्स नॉट जस्ट फिलोसफी, इट्स एक्चुअल रियलिटी, दिस इज द रियलिटी। बस तौबा से बात शुरू करें और फिर आगे देखते जाए। दूसरी तरफ अवाम ने यह समझ लिया कि इंसदाद जराइम सिर्फ हुकूमत का काम है, ठीक है, यानी अवाम ने सारे का सारा इल्जाम होता है ना दूसरे को देने की आदत बन जाती है ना, इल्जाम दूसरे को देना है, तो अवाम ने इल्जाम जो है वो सारा का सारा हुकूमत को दे दिया, है ना, कि ये तो हुकूमत नहीं करती अपना काम, इस वजह से सारे के सारा मसला हुआ है, ठीक है, तो हुकूमत करे जो भी करना है। तो वही फरमा रहे हैं कि अवाम ने ये समझ लिया कि इंसदाद जराइम यानी जराइम को रोकना ये तो सिर्फ हुकूमत का काम है, वो हर जराइम पेशा के जराइम पर पर्दा डाल दें कि आदी हो गए, महज एहकाक हक और इंसदाद जराइम के लिए सच्ची शहादत देने का रिवाज ही उनमें ना रहा अवाम के अंदर, ठीक है, यानी हक को कायम करने के लिए, हक को साबित करने के लिए और जराइम को रोकने के लिए सच्ची शहादत देना, तो ये अवाम के अंदर रिवाज ना रहा। अब इसके अंदर थोड़ी सी तफसील है, वो क्या है कि जाहिर सी बात है जो आप पाकिस्तान और इवन इंडिया से भी ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, तो अगर सच्ची शहादत दें जा करके तो फिर तो वो गले पड़ जाती है, और फिर जो है ना फिर तो अपनी जान बचाना और अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो जाता है, बल्कि वो जो अदालत होती है उसके अंदर पेशियों पे पेशियां, पेशियों पे पेशियां, पेशियों पे पेशियां, है ना, नाक में दम करके रख देते हैं और फैसला नहीं सुना करके दे रहे होते हैं, ठीक है, और जान का खौफ अलग। हमारे मुल्क में तो बहुत आसान है किसी बंदे को दुनिया से अगली दुनिया में पहुंचा देना, इंतहाई आसान काम है और आगे से कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, तो अब वहां पर जो है वो सच्ची शहादत कैसे दें। तो भाई इसका जवाब ये है कि ये जो सिचुएशन पहुंची है ना यहां तक, ये शुरू में ऐसी सिचुएशन नहीं होती है कि सच्ची शहादत देने का मतलब है अगले जहान की तरफ परवास कर जाएं आप, ठीक है, ये इब्तिदा में ऐसी सिचुएशन नहीं थी। इब्तिदा में सिचुएशन खराब कहां पर थी कि व्हाई शुड आई केयर, भाई कोई हुआ, किसी ने कुछ किया, गलत किया, मैं क्या, मैनू की, मैं अपने काम से काम रखूं, मुझे क्या जरूरत है जो है वो किसी इसका, वो तो हुकूमत का काम है वो करेगा। और हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने उस वाली स्टेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उस स्टेज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 1980s में जो गन कल्चर आया है ना हमारे मुल्क के अंदर, इंतहाई दर्जे का जो गन कल्चर आया है, पहले इतना नहीं था, पहले ज्यादा से ज्यादा खंजर कल्चर होता था, छोटा मोटा सा, इतना आसान नहीं होता था कि बंदे को जो है वो मार देना, ठीक है, उस जमाने में जो कौम थी वो इस वाली का शिकार थी कि भाई ये तो हुकूमत का काम है, मेरा क्या, मुझे तो डिग्रियां लेनी है, मुझे तो जो है वो ग्रेड्स उठाने हैं, मुझे जो है वो अपने पैसे बनाने हैं, मुझे जो अपना कारोबार चलाना है, ये करना है, तो मुआशरे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर कुछ थोड़ी है। जब ये एटीट्यूड था ना, इससे फिर मामला खराब होते गए, हत्ता के नौबत यहां तक आ गई है कि अब आप चाहें भी अगर सच्ची गवाही देना तो भी आप दे सकते, ठीक है ना, तो अब इस सिचुएशन के अंदर जो लोग पैदा हुए हैं तो उनको फिर मशायख ने इसका भी जो है वो बताया है कि इसमें जो है ना वो फिर नहीं करें। अब जो है ना, अब तो पेरेंट्स की गलती हो गई, ग्रैंड पेरेंट्स की गलती हो गई, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स की गलती हो गई, जिसको कि हम इस वक्त बैठे हुए जो है ना उसके फल काट रहे हैं, ठीक है, तो इस वक्त जो सिचुएशन ऐसी है ना, इस वक्त जो है वो वाकई नहीं देने की कोशिश करें, ठीक है ना, जब जान का खौफ हो ना उस वक्त ये करने की जरूरत नहीं होती। बल्कि हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो कि दुनिया से गुजरे में उनको 100 साल तकरीबन हो गए ना, ठीक है ना, तकरीबन, तो उन्होंने अपने मलफूजात के अंदर ये बात फरमाई है कि जब इस किस्म की सिचुएशन बन जाए ना कि मुसीबत पड़ जाए गवाही देना, तो अब जिम्मेदारी नहीं होती गवाही देने, ठीक है, तो अब तो इट्स ऑलरेडी टू लेट, अब तो अल्लाह ताला से माफिया मांगने की खाली एक ही चीज रह गई अब हमारे पास, माफिया मांग, अब हम फिक्स नहीं कर सकते प्रॉब्लम्स, अब हम फिक्स नहीं कर सकते प्रॉब्लम्स, राइट, ये बात याद रखें कि हमारी हरकतें और हमारे पिछली जनरेशन की हरकतें इस दर्जे पे हमें ले आई हैं कि अब हम, हमारे पास असबाब खत्म हो गए हैं फिक्स करने वाले, झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि नहीं नहीं अभी भी हम तहरीक चलाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे और नारे मारेंगे और जुलूस निकालेंगे और जलाओ घेराव करेंगे और हालात ठीक कर देंगे, झूठ बोलते हैं, उनको अंदाजा ही नहीं है कि वो हकीकत क्या है, या वो उनको पता, अंदाजा सबको चाहे, बस ऐसी जो है वो अपनी जमात चमकाने के लिए, अपनी दुकान चमकाने के लिए जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे होते हैं, ठीक है ना, इस वक्त तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, ठीक है ना, तौबा तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, हम तौबा की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए, तौबा की तरफ मुतवज्जे नहीं। बाकी सारे जो है ना वो तमाशे चल रहे हैं हमारे दीन के नाम पर भी, दीनी कार्ड खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। पहले तो खाली मौलवी इस्तेमाल करते थे ना, आजकल तो माशाल्लाह हर बंदा ही इस्तेमाल कर रहा है दीनी कार्ड, ठीक है ना। लेकिन तौबा की तरफ हम तवज्जो नहीं कर, ठीक है, उसके बगैर कुछ भी नहीं होने। क्या लिखा आपने, इल्म हासिल करने की वजह से अपनी गलतियां तो नजर आ रही हैं लेकिन दिल में नदामत और शर्मिंदगी नहीं है, फिर क्या करें। यार फिर वही बात, फिर क्या करें, नादम हो जाए भाई, इसका और क्या जवाब दूं आपको, नदामत और शर्मिंदगी नहीं है। फिर इंतजार करें, जब पिटाई होगी ना जबरदस्त किस्म की आपकी, फिर उसके बाद अफसोस करेंगे, फिर उसके बाद, या और नादिम हो जाता तो शायद पिटाई ना होती, और क्या जवाब दें आपको, यही जवाब दे सकते हैं। फिर इंतजार करें, अल्लाह ताला भी फरमाते हैं है ना कि फिर इंतजार करो। मैं वो क्या, वो सूरह तौबा वाली जो आयत है, ठीक है, सूरह तौबा वाली आयत पढ़ें और इंतजार करें, ठीक है। वो क्या है, इनकाना आबा हुकुम व अबना हुकुम व अखवान हुकुम व अशीरत हुकुम है, तो फिर क्या है, अहब्बू आफिस तो मैं नहीं हूँ लेकिन उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है, बस फिर इंतजार करें। किसी ने कहा कि लाहौर के हालात इतने बुरे हैं कि किसी से मंगा लेने का दौर ही नहीं, दो थप्पड़ खाकर घर आ जाओ, ऐसे ही है, ऐसे ही, ठीक है। लेकिन थप्पड़ खाने की कोई जरूरत नहीं है, तौबा करने के लिए कोई थप्पड़ नहीं खाने पड़ते हैं भाई, ठीक है, तौबा करने के लिए कोई थप्पड़ नहीं खाने पड़ते हैं, ठीक है। قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، بس انتظار کرو حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، ठीक है। तो जिहाद के लिए मैदान जंग जाने की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, वो तो जब कोई अमीर मिलेगा जो हुक्म देगा जाने के लिए, तब उसके बाद जो है ना वो आप जिहाद करने जाइएगा। अभी तो तौबा से शुरू करें, अभी तो तौबा से मांगना शुरू करें, ठीक है ना। वरना फतरबसों का जो हुक्म है ना वो हमारे ऊपर अप्लाई हो जाएगा क्योंकि हम तौबा नहीं कर रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ के जरिए मदद भी नहीं मांग रहे होते हैं, बिल्कुल सही है, नहीं मांग रहे होते हैं भाई, मांग लें क्या, क्या पैसे लगते हैं इसके अंदर, क्या पैसे भी नहीं लगते, वुजू भी नहीं करना पड़ता इसके लिए, हज उमरा करना तो दूर की बात, इसके लिए वुजू भी नहीं करना पड़ता। लेटे हुए हैं तो उठने की भी जरूरत नहीं है, उठे हुए हैं तो बैठने की भी जरूरत नहीं है, जिस हाल में है उसी हाल में अल्लाह ताला से तौबा करें, ठीक है। लेकिन उसके लिए जाहिर है कि गुनाह को गुनाह समझना होगा पहले, गुनाह को गुनाह मानना होगा पहले, और उसके ऊपर नादिम शर्मिंदा होना होगा, वरना तो तौबा हो ही नहीं सकती। फरमाते हैं कि महज एहकाक हक और इंसदाद जराइम के लिए सच्ची शहादत देने का रिवाज ही उनमें ना रहा, उनको ये समझना चाहिए कि मुजरिम के जुर्म पर पर्दा डालना और शहादत से गुरेज करना जुर्म की एआनत है, जो अजरूए कुरान करीम हराम और सख्त गुनाह है, और वला तआवनु अलल इस्म वल उदवान के हुक्म से बगावत है। तो पिछली जनरेशन ने जो ये किया है तो बगावत करी है, सख्त गुनाह और हराम के मुर्तकिब हुए हैं, तो फिर उसके बाद तो वही होना था जो कि हो रहा है पूरे मुल्क के अंदर, ठीक है। हर एक मोमिन का अपना मैदान है, वही उसके जिहाद है, ठीक है। और तौबा जो है वो हर मोमिन का मैदान है, ये नहीं है कि औरत का मैदान तौबा है और मर्द का मैदान तौबा नहीं है, बच्चे का बच्चों के ऊपर तो खैर वैसे भी अहकाम शरीयत नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जी बूढ़े का मैदान तौबा है और बुढ़िया का मैदान तौबा नहीं, नहीं, तौबा तो हर एक का मैदान है भाई, तौबा तो हर एक का मैदान है, ठीक है। और हमारा इस वक्त जिहाद जो है ना वो तौबा ही है, क्योंकि हम तौबा ही जो है ना वो हमारे लिए गोया के दुश्मन के सामने तलवार लेकर के खड़ा हो जाना, यही जो है ना हमारे लिए सबसे ज्यादा सख्त काम यही हो गया है, तौबा नहीं करना, ठीक है। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमा दे। बस इसके आगे मजीद क्या कहना था, हाँ अच्छा, टाइम जो है वो है भाई हमारे पास 8 मिनट हैं, तो आगे की आयात जो है वो कम से कम तर्जुमा पढ़ना शुरू कर देते हैं इन आयात का। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 3, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुर्रिमत अलैकुम, के हराम कर दिए गए तुम्हारे ऊपर, अलमैता, ठीक है, मैता यानी मुर्दार जानवर जिसको कहते हैं ना, जो कि अपनी मौत आप मर गया हो, वद्दम, यानी खून, बहता हुआ खून, वलहमुल खिंजीरी और खिंजीर का गोश्त, ठीक है, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाही, और वो जो के जिस जानवर पर नाम पुकारा जाए अल्लाह के गैर का, ठीक है, यानी जबा करते हुए ना अल्लाह का गैर का नाम, यानी कोई किसी पीर फकीर का नाम या किसी और किसी भी किस्म के गैरुल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम के ऊपर किसी को जबा किया गया हो, वो भी हुर्रिमत अलैकुम है। वल मुनखनिकतु, और ऐसा जानवर जो कि गला घोंटने से मर गया हो, गला घुटने से यानी स्ट्रैंगल होकर के मर गया हो, कोई रस्सी वस्सी आ गई उसको लग गई हो। वल मौकूज़तु, या चोट लगने से वो मर ही गया, ठीक है, इसकी तफसील आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। वल मुतरद्दियतु, या ऊंचे से नीचे गिर करके मर गया हो। वन नतीहतु, या सींग मारने की वजह से किसी दूसरे जानवर ने उसको ऐसी सींग मारी कि नॉकआउट ही हो गया, ये टेक्निकल। वमा अकला सबरू, या जिसको किसी दरिंदे ने खा लिया, सबरू यानी दरिंदा, कार्निवोरस एनिमल्स जिनको कहते हैं। इल्ला मा रकई तुम, सिवाय उसके जिसको तुमने जबाह कर लिया। रकई तुम से मतलब जो तस्किया का तरीका है जबाह करने वाला। आजकल बकरीद भी आने वाली है और कुर्बानी के अहकाम वगैरह भी जो है वो माशाल्लाह खवातीन की क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं और मर्दों में भी इंशाल्लाह साथ पढ़ाएंगे। तो जक्कई तुम, यानी ऐसे जबाह करना जैसे कि शरीयत का तरीका है, हुक्म है, तो उससे फिर जानवर जो है वो पाक हो जाता है। लेकिन खिंजीर को जबाह करने से वो पाक नहीं हो जाता, और जो मर चुका है उसको जबाह करने से वो पाक नहीं होता, अभी जिसके अंदर जिंदगी की रमक बाकी है उसको जबाह करने से वो पाक होता है। वमा जुबिहा अलन नुसुबी, तो हुर्रिमत अलैकुम का जो अतफ है वो यहाँ तक चल रहा है, यही यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है कि वो जिसको के नुसुब के ऊपर जबाह किया गया, बिल्कुल शरी तरीके से, यानी उसकी गर्दन की रगें काटी गई हो, लेकिन किसी ऐसे आस्ताने पर कि जहां पर किसी गैरुल्लाह की ताजीम होती है, वहां पर ला करके इसको जबा किया है, तो उसकी ताजीम की वजह से ये जानवर भी हराम हो जाए, क्योंकि गैरुल्लाह की ताजीम करना है ना, उसके नाम पे जो है वो, यानी उसका नाम नहीं भी लिया लेकिन खाली उस जगह पे जा करके जबा कर दिया ना, ठीक है, उससे भी वो जानवर हराम हो जाता है। वो अन तस्तक्सिमु बिल अज़नाम, और ये बात भी हुर्रिमत अलैकुम है कि तुम तकसीम करो जुए के तीरों से, ठीक है, यानी तीरों के जरिए से जो फाल निकाली जाती थी, अब इसकी सारी तफसील आगे आएगी इंशाल्लाह। तो ये भी तुम्हारे ऊपर हराम है। ज़ालिकुम फिस्क, ये सब गुनाह के काम हैं। गुनाह क्या होता है? जो हराम अल्लाह ताला ने कर दिया, ठीक है, जो मना कर दिया उसके ऊपर अमल करना फिस्क कहलाता है। जिस तरह फिस्क और फजूर के अल्फाज है ना, तो फिस्क और फजूर कुरान मजीद में जिस तरह से फिस्क का इस्तेमाल हुआ। अलयौम यइसल्लज़ीना कफरू मिन दीन, अलयौम आज के दिन, यइसा मायूस हो गए, अल्लज़ीना कफरू वो जिन्होंने आपका इनकार किया, आपको रसूल मानने से और आपकी बातें अल्लाह की बातें मानने से, आपकी बातों को अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, वो लोग मायूस हो गए आज। मिन दीनकुम, आपके दीन से, क्या मतलब? इससे पहले मायूस नहीं हुए थे, इससे पहले वो दीन को तब्दील करने की कोशिशें करते रहते थे, अब जो है ना वो तब्दील करने की कोशिश में मायूस हो गए, अब जो है ना वो नेक्स्ट स्टेज शुरू हो गया, अगला स्टेज शुरू हो गया। खुदा तआला आज खवातीन की क्लास में भी यही बात हुई थी कि जो एक मिडिल स्टेज था ना उम्मत का, तो उसमें क्या था कि दीन इतना स्टैब्लिश हो गया था कि वो मुसलमान के अंदर से दीन निकालने की कुदरत नहीं रखते थे काफी, ये नहीं करते थे कि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि मुसलमान के अंदर से ईमान को निकाल देंगे, मायूस हो गए इस बात से। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई मुसलमान में से दीन को तो निकाल नहीं सकते, मुसलमान को ही निकाल दो दुनिया से, तो वो अगर करते भी कोई कोशिश ना, तो वो मुसलमान को मार देने की कोशिश करते थे। इससे पहले जो है ना वो ये कोशिशें भी करते थे कि मुसलमान को किसी तरह से कन्विंस कर लें कि वो अपने दीन को बदल दे, ठीक है ना, उनको उम्मीद थी कि ये अभी भी दीन जो है ना बदला जा सकता है, फिर उम्मीद खत्म हो गई। लेकिन जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि बदा अल इस्लामु गरीबन फसयउदु कमा बदा, कि इस्लाम जिस तरह से गरीब और एक अजनबी सी चीज के तौर पे शुरू हुआ था, ये लौट करके उसी हालत में पहुंच जाएगा जैसे कि शुरू हुआ था। तो इस जमाने में भी हमें नजर आता है कि काफिर को अब हमारे जिस्मों को मारने में दिलचस्पी नहीं रही है, बल्कि उसको अब फिर से नजर आना शुरू हो गया है कि ये इतने कमजोर हो गए ईमानी तौर पर कि बस इनके अंदर से हम बड़ी आसानी के साथ ईमान निकाल लें, बाकी सब खैर है, कोई मसला नहीं, रहने दो इनको, जीने दो इनको, माल पैसे को एंजॉय करने दो, हमें कोई जरूरत नहीं इनको मारने की, बस ईमान बस थोड़ा सा रह गया इनके अंदर, उसको निकाल लें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ठीक है ना, ये हमारी अपनी स्लैंग है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। लेकिन काफिर इस तरीके से मुसलमान को अप्रोच कर रहे हैं। तो अल यौम यइस अल्लज़ीना कफरू मिन दीनकुम, कि आज के दिन यानी ये वो हज विदा का दिन है, अरफात का दिन है, कि इस दिन ये आपके दीन से मायूस हो गए हैं। फला तख्शौहुम वख्शौनी, बस अब आप इनसे मत डरें, ये नहीं कि पहले डरें लेकिन आप मत डरें इनसे, बल्कि आप मुझसे डरें, वख्शौनी, ठीक है ना, ये ना नून के नीचे जो जेर है ये दरअसल या मुतकलम लगी हुई होती है इसके साथ, उसको शॉर्ट फॉर्म करने के लिए या को हटा देते हैं या थोड़ी खाली जेर लगा देते हैं। तो आप इनसे मत डरिए, मुझसे डरिए। अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने मुकम्मल कर दिया, कमाल को पहुंचा दिया तुम्हारी, ये तुम्हारा दीन, अकमलतु कमाल को पहुंचा दिया, वह अतममतु अलैकुम नियमती, और अपनी नियमतें तुम्हारे ऊपर तमाम कर दी। कौन सी वाली नियमतें? क्या अब उसके बाद खाना नहीं मिलेगा, बस मिल गया जितना मिलना था? नहीं, हिदायत की जो नियमत इंसानों को मिलनी है, मुसलमानों को मिलनी है, वो पूरी हो गई, ठीक है। अब उसी का हर दौर हर जमाने के अंदर उसकी एक्सप्लेनेशंस तो बाकी रहेंगी, उसकी एडेप्टेशंस तो बाकी रहेंगी, उसके अंदर एडिशंस नहीं हो सकती, कि जैसे कल कुछ भाइयों से बात हो रही थी कि भाई जकात निकालते हैं लेकिन फिर दिल में आता है कि भाई और भी देना चाहिए, तो क्या हम डबल जकात दे सकते हैं? तो हमने कहा नहीं भाई, वो जकात जितनी है ना उतनी ही दे सकते हैं, 2.5% से कुछ बढ़ा करके 5% जकात नहीं निकाल सकते। हाँ, सदका कर सकते हैं, खैरात कर सकते हैं, वो फिर वो दूसरी सुन्नत से साबित है, लेकिन जकात को चेंज नहीं कर सकते, वो डन हो गया 2.5%, ठीक है। तो अतमम तो अलैकुम नियमती, यानी जो अल्लाह ताला की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन आने थे और जो हुकूक तय होने थे वो तय हो चुके, और ये नेमत है, ठीक है। एक दूसरे के हुकूक अदा करोगे तो एक दूसरे के लिए नेमत बनोगे ना। तो अतमम तो अलैकुम नियमती वा रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए हमने इस्लाम को बतौर दीन के पसंद कर लिया, हम इससे राजी हो गए, इस बात के ऊपर खुश हो गए कि आपके लिए जो है ना बस एक इस्लाम ही दीन है, ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा दीन नहीं है तुम्हारे लिए। हिदायत जो तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा सके, अल्लाह ताला की रजा मिल सके, दुनिया की कामयाबी मिल सके, आखिरत की कामयाबी मिल सके, इसके लिए अब कोई और दूसरा तरीका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम दीन ही है, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِلْإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, پس جو کوئی, فَمَنِ اضْطُرَّ, کہ جو کوئی لاچار ہو جائے, فِي مَخْمَصَةٍ یعنی بھوک سے مجبور ہو جائے, ٹھیک ہے نا, مُضْطَر جو کہ پریشان ہوتا ہے اور بہت ہی یعنی مشکل حالت میں ہوتا ہے, اس کو مُضْطَر کہتے ہیں, تو جو مُضْطَر ہو جائے भूख की हालत में, गैर मुतजानिफिन लिइस्मिन, और उसके दिल में कोई गुनाह की तरफ माइल होने का नहीं हो के अब गुनाह की तरफ, बल्कि वो अपनी बस जान बचाना उसके लिए, सर्वाइवल उसके लिए बस बन जाए, है ना, कि कुछ उसको खाए ताकि वो उसकी जिंदगी बच सके ना, ठीक है, गुनाह का कोई इरादा नहीं है उसके अंदर, तो गैर मुतजानिफिन के गुनाह पर बिल्कुल भी माइल ना हो वो, इस्म गुनाह को कहते हैं। इन्नल्लाह, पस बेशक अल्लाह ताला गफूर है और रहीम, माफ करने वाला है और मेहरबान है। अब इसकी तफसीर इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर पहले खुलासा से तफसीर से पढ़ेंगे अल्लाह की तौफीक से, उसके बाद में मारूफ मसाइल से पढ़ेंगे। किसी को कोई सवाल रह तो नहीं गया या कोई और बात अगर है? ठीक है, क्लास खत्म करते हैं। वाह, अलहमदुल्ला।